नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मैट रिक्टल की अ डेडली वॉन्डरिंग एक कथात्मक गैर कथा पुस्तक है जो डिजिटल युग में मानवीय ध्यान की सीमाओं को एक वास्तविक सड़क दुर्घटना के माध्यम से समझती है। पुस्तक का केंद्र डासो में यूटा में हुई वह टक्कर है जिसमें युवा चालक रेगी शॉ संदेश लिखते हुए गाड़ी चला रहा था और 2 वैज्ञानिकों की मृत्यु हुई। रिक्टल इस घटना को केवल व्यक्तिगत लापरवाही या अपराध की कहानी नहीं मानते, वे पुलिस जांच, कानूनी प्रक्रिया, पीड़ित परिवारों और शॉ की जिम्मेदारी स्वीकार करने की यात्रा के साथ ध्यान, विचलन और बहुकार्य पर वैज्ञानिक शोध जोड़ते हैं। लेखक जो विचलित ड्राइविंग पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार पा चुके हैं, दिखाते हैं कि उपकरणों की सुविधा और मस्तिष्क की वास्तविक क्षमता में गंभीर अंतर है। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को यह समझाना है कि निरंतर जुड़ाव की आदत, विशेषकर वाहन चलाते समय, निर्णय, प्रतिक्रिया और नैतिक जिम्मेदारी को कैसे प्रभावित करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, संदेश लिखते हुए ड्राइविंग को दुर्घटना नहीं, पूर्वानुमेय जोखिम के रूप में देखना। पुस्तक का सबसे प्रत्यक्ष तर्क यह है कि संदेश लिखते हुए वाहन चलाना किसी क्षणिक असावधानी का साधारण रूप नहीं है। इसमें चालक की आंखें सड़क से हटती है, हाथ नियंत्रण से हट सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मन ड्राइविंग के तत्काल परिवेश से कट जाता है। रेगी शॉ की घटना इस जोखिम को मानवीय रूप देती है क्योंकि उसके परिणाम केवल चालक तक सीमित नहीं रहे बल्कि 2 लोगों की मृत्यु और अनेक परिवारों के स्थायी शोक में बदले। रिक्टल इस मामले को सनसनीखेज उदाहरण की तरह नहीं बरतते, वे दिखाते हैं कि जांचकर्ताओं को शुरुआत में खराब मौसम या सामान्य सड़क दुर्घटना जैसे संभावित कारणों से आगे बढ़कर यह समझना पड़ा कि चालक का ध्यान वास्तव में कहां था। यह जांच उस समय महत्वपूर्ण थी जब फोन इस्तेमाल को अक्सर सामान्य सुविधा माना जाता था और संदेश लिखते हुए ड्राइविंग के कानूनी तथा सामाजिक अर्थ अभी स्पष्ट नहीं थे। पुस्तक पाठक को कारण और परिणाम की श्रृंखला देखने को कहती है। फोन पर एक छोटा उत्तर निजी और तात्कालिक लग सकता है, पर तेज गति से चलती गाड़ी में वही निर्णय दूसरों पर अनियंत्रित खतरा थोप देता है। इसलिए लेखक का जोर केवल नियम मानने पर नहीं, जोखिम को पहले से पहचानने पर है। चालक को यह मानकर चलना चाहिए कि ध्यान का छोटा विभाजन भी सड़क पर लंबा घातक अंतराल बन सकता है। दूसरा, बहुकार्य की धारणा और मस्तिष्क की सीमित ध्यान क्षमता। अ डेडली वॉन्डरिंग का वैज्ञानिक आधार इस लोकप्रिय विश्वास को चुनौती देता है कि लोग एक साथ कई जटिल काम प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। रिक्टल ध्यान संबंधी शोध के सहारे बताते हैं कि मस्तिष्क अक्सर 2 कार्यों को समानांतर ढंग से पूरा नहीं करता बल्कि उनके बीच तेजी से ध्यान बदलता है। यह बदलाव इतना सहज लग सकता है कि व्यक्ति अपनी क्षमता का गलत आकलन करने लगता है। ड्राइविंग में यह भ्रम विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि सड़क की स्थिति लगातार बदलती रहती है और प्रतिक्रिया के लिए क्षण भर उपलब्ध होता है। संदेश पढ़ने या लिखने के दौरान चालक केवल दृष्टि नहीं हटाता, उसका मानसिक संसाधन भी भाषा, सामाजिक उत्तर और फोन की सूचना पर लग जाता है। नतीजतन वह सामने मौजूद संकेतों को देखकर भी समय पर उनका अर्थ नहीं समझ पाता। पुस्तक तकनीक को अपने आप में शत्रु नहीं ठहराती। फोन संपर्क, सूचना और सुविधा दे सकते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब उपकरण ऐसे कामों में घुस जाते हैं जिनके लिए निरंतर एकाग्र निगरानी चाहिए। इस तरह रिक्टल का विश्लेषण ड्राइविंग से आगे भी जाता है। वह पाठक को अपने दैनिक कामकाज में यह पूछने के लिए प्रेरित करता है कि क्या लगातार सूचनाएं वास्तव में उत्पादकता बढ़ाती है या वे एकाग्रता को टुकड़ों में बांट रही है। पुस्तक का उत्तर नैतिक उपदेश नहीं बल्कि संज्ञानात्मक सीमा की स्वीकृति है। तीसरा, जांच और अभियोजन ने विचलित ड्राइविंग की सार्वजनिक समझ कैसे बदली। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि यह दुर्घटना के बाद की जांच को विस्तार से देखती है। किसी घातक टक्कर में कारण सिद्ध करना कठिन हो सकता है, विशेषकर जब चालक शुरू में फोन के उपयोग से इनकार करे और प्रत्यक्ष गवाह सीमित हो। रिक्टल के विवरण में जांचकर्ता दुर्घटना को केवल दुखद संयोग मानकर बंद नहीं करते बल्कि फोन रिकॉर्ड और घटनाक्रम जैसी उपलब्ध सूचनाओं के सहारे जवाब तलाशते हैं। यह प्रक्रिया बताती है कि डिजिटल व्यवहार के प्रमाण कानूनी जिम्मेदारी तय करने में कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही पुस्तक अभियोजन को केवल दंड की कहानी नहीं बनाती, उसमें यह प्रश्न भी मौजूद है कि एक युवा व्यक्ति की गंभीर गलती, उसके परिवार का बचाव, पीड़ितों के परिवारों का नुकसान और राज्य की जवाबदेही, इन सब के बीच न्याय का अर्थ क्या हो। मामला उस व्यापक बदलाव का हिस्सा बनता है जिसमें संदेश लिखते हुए ड्राइविंग को निजी चुनाव के बजाय सार्वजनिक सुरक्षा के विषय के रूप में देखा जाने लगा। कानून और प्रतिबंधों की भूमिका यह आवश्यक है, लेकिन रिक्टल यह भी संकेत देते हैं कि कानून अकेले आदतों को नहीं बदलते, जब समाज निरंतर उपलब्ध रहने और तुरंत उत्तर देने को सामान्य मानता है, तब जोखिम भरा व्यवहार आसानी से सामान्यीकृत हो जाता है। इसलिए जांच की उपलब्धि केवल दोष स्थापित करना नहीं थी, उसने उस सांस्कृतिक अंधे बिंदु को दिखाई देने योग्य बनाया जिसमें चालक अपनी सुविधा को दूसरों की सुरक्षा से ऊपर रख देता है। चौथा दोष, पश्चाताप और जवाबदेही के बीच रेगी शॉ की मानवीय कहानी रिक्टेल की पुस्तक को अलग बनाती है। उसकी यह क्षमता कि वह रेगी शॉ को न तो केवल राक्षसी अपराधी बनाती है और न ही उसे उसके कार्य के परिणामों से मुक्त करती है। दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यु का तथ्य केंद्रीय और अपरिवर्तनीय रहता है, फिर भी लेखक शॉ उसके परिवार, पीड़ितों के परिवारों और मामले से जुड़े अन्य लोगों की पृष्ठभूमि को शामिल करते हैं ताकि पाठक समझ सके कि त्रासदी के बाद जिम्मेदारी कैसे विकसित होती है। शॉ का आरंभिक इनकार और बाद में जिम्मेदारी स्वीकार करना इस कथा का नैतिक तनाव है। यह परिवर्तन आसान मुक्ति का प्रमाण नहीं है बल्कि उस कठिन प्रक्रिया का संकेत है जिसमें व्यक्ति अपने किए नुकसान का सामना करता है। पुस्तक यह भी दिखाती है कि पीड़ितों के परिजनों के लिए कानूनी निर्णय अंतिम समाधान नहीं होता, नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, इसलिए न्याय, क्रोध, स्मृति और क्षमा अलग अलग दिशाओं में काम कर सकते हैं। इस मानवीय बहुस्तरीयता से पुस्तक सार्वजनिक सुरक्षा के संदेश को अधिक विश्वसनीय बनाती है। यदि शॉ को केवल असाधारण रूप से बुरा व्यक्ति कहा जाए तो पाठक खुद को उससे अलग समझकर खतरे को नजरअंदाज कर सकता है। रिक्टेल इसके विपरीत असहज संभावना रखते हैं कि साधारण सामाजिक और तकनीक आदि व्यवहार वाला व्यक्ति भी विनाशकारी निर्णय ले सकता है। जवाबदेही का अर्थ तब केवल सजा नहीं, अपने व्यवहार और उसके सामाजिक प्रभाव को बदलना भी बनता है। अंत में निरंतर संपर्क की संस्कृति और तकनीक से पैदा होने वाला सामान्यीकृत खतरा, पुस्तक का दायरा सड़क सुरक्षा से व्यापक है। रिक्टेल उस डिजिटल संस्कृति की जांच करते हैं जिसमें तुरंत संदेश देखना, जवाब देना और हमेशा उपलब्ध रहना सामाजिक अपेक्षा बन चुका है। इस अपेक्षा का प्रभाव इसलिए गहरा है क्योंकि फोन का उपयोग अक्सर स्वेच्छा से ज्यादा आदतन और संबंधों से जुड़ा हुआ महसूस होता है। व्यक्ति सोच सकता है कि वह केवल एक संदेश देख रहा है लेकिन उसके पीछे मित्र, परिवार या काम को तुरंत प्रतिक्रिया देने की अदृश्य मांग काम कर रही होती है। रिक्टेल के अनुसार तकनीक की डिजाइन और सामाजिक स्वीकृति दोनों इस व्यवहार को सामान्य बनाते हैं। वाहन में फोन, नेविगेशन और अन्य स्क्रीन आधारित सुविधाओं का बढ़ना सुविधा देता है, पर यह मान लेने का कारण नहीं कि चालक का ध्यान असीमित है। पुस्तक इसीलिए व्यक्तिगत अनुशासन और संस्थागत जिम्मेदारी दोनों की ओर संकेत करती है। व्यक्ति को ड्राइविंग से पहले फोन दूर रखने या सूचनाएं बंद करने जैसी ठोस सीमाएं बनानी पड़ती है। वहीं परिवार, विद्यालय, नियोक्ता, वाहन उद्योग और नीति निर्माता ऐसे मानदंड बना सकते हैं जो तत्काल उत्तर की अपेक्षा को कम करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक तकनीकी प्रगति के विरुद्ध सरल तर्क नहीं देते। उनका प्रश्न यह है कि क्या समाज नई सुविधा को अपनाने से पहले उसके मानवीय लागत और ध्यान पर प्रभाव को पर्याप्त गंभीरता से देखता है। यही प्रश्न पुस्तक को आज भी प्रासंगिक बनाता है। निष्कर्ष में अ डेडली वॉन्डरिंग उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो ड्राइविंग, डिजिटल आदतों, सार्वजनिक नीति, मनोविज्ञान या कथात्मक पत्रकारिता में रुचि रखते हैं, किशोरों के माता पिता, शिक्षकों, सड़क सुरक्षा से जुड़े पेशेवरों और नियमित वाहन चालकों के लिए इसका व्यावहारिक महत्व स्पष्ट है, क्योंकि यह जोखिम को अमूर्त चेतावनी की जगह निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया के रूप में दिखाती है। पाठक इससे यह समझ सकते हैं कि केवल यह जानना पर्याप्त नहीं कि संदेश लिखते हुए ड्राइविंग खतरनाक है, व्यवहार बदलने के लिए ध्यान की सीमाओं को स्वीकारना, उपकरणों के उपयोग पर पहले से सीमा तय करना और तत्काल प्रतिक्रिया की सामाजिक आदत पर सवाल उठाना जरूरी है। बौद्धिक स्तर पर पुस्तक कानून, न्यूरोविज्ञान और नैतिक जिम्मेदारी के संबंध को सुलभ ढंग से जोड़ती है। इसी संयोजन में इसकी विशिष्टता है। विचलित ड्राइविंग पर कई पुस्तकें आंकड़ों, नियमों या अभियान संदेशों पर केंद्रित रहती है। रिक्टेल की पुस्तक एक विशिष्ट दुर्घटना की जांच, पीड़ितों और जिम्मेदार चालक के मानवीय अनुभव तथा ध्यान के विज्ञान को एक ही ढांचे में रखती है। इसलिए यह न तो केवल अपराध कथा है, न केवल विज्ञान लोकप्रियकरण और न केवल तकनीक विरोधी चेतावनी। कुछ पाठकों को वैज्ञानिक प्रसंग खाने लग सकते हैं लेकिन वे पुस्तक के मुख्य प्रश्न को मजबूत करते हैं। तकनीक के साथ रहने वाले लगभग हर व्यक्ति के लिए यह एक गंभीर, उपयोगी और विचारोत्तेजक अध्ययन है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मैट रिश्टर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।